आजकल जैसा भले ही वो कहानी काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई गांव का नाम, व्यक्ति का नाम, नाम रखकर बात करते हैं। और पुराने जमाने में जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, नाम भी नहीं है और कहानी शुरू करते थे। फिर धीरे धीरे जमाना बदला तो पशुओं के नाम पे कहानियां चलती थी ना। तो एक भयंकर जंगल में एक शेर रहता था, है ना? फिर आगे बढ़े तो शेर के भी नाम रख दिए हमने। फिर पंचतंत्र तक आए तो सब जो पात्रों के नाम रख दिए गए, और आज तो बिना नाम के कुछ काम होता ही नहीं है। अब वो कहते हैं जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, बंधन यम चिरकाल परिबद्ध, बहुत समय से बंधन में पड़ा हुआ है। तो वे विचार करे कि मेरा बंधन तीव्र है कि मंद स्वभाव वाला है, कितने काल से है ये जाने। तो इस जानने से वो बंधन से छूटता नहीं है, बल्कि जब वह बंधन को काटे तो वो बंधन से छूटता है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा अनादि काल से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग इन बंधनों में पड़ा हुआ है कर्म के, और उनकी कितनी ही गहराई से इसे क्यों ना जाने तो वो इस बंधनों से छूटेगा नहीं। पीछे बंधाधिकार समाप्त हुआ है और मोक्ष अधिकार आरंभ हो रहा है। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो ये अधिकारों का वर्गीकरण नहीं किया था, वो तो 415 गाथा सीधी लिखते गए थे। ये तो बाद के आचार्यों ने, खासकर जो अपने सामने शास्त्र है, तो अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति में नाटक के रूप में इसका विभाजन किया। इसलिए पहला अंक, दूसरा अंक, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, नाटक में अंक और दृश्य होते हैं ना, इस तरह से इन्होंने उनका विभाजन किया। अब यह बंधाधिकार की अंतिम गाथा पढ़ो और फिर ये पढ़ो, तो वही क्रम, उनका तो वो क्रम चल रहा है। इसलिए क्योंकि पिछले अध्याय में बंध का वर्णन था, कुंद कुंद की शैली की ये विशेषता है, तत्वार सूत्र और ग्रंथों में पढ़ेंगे तो मोक्षाधिकार है तो पहले मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है, कौन जी मोक्ष में है, उनकी स्थिति क्या है, इस तरह बताते हैं। और बंध का अधिकार हो तो बंधन भी बताते हैं, समय सार में ना वैसा बंधन बताया ना मोक्ष बताया। वो तो ये कह रहे पूंजी बंधाधिकार चल रहा था और बंधाधिकार की तुम बारीकियों में जाओ और उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाओ। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं, फिर उनके और 148 भेद होते हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, फिर उसकी बहुत अवस्थाएं होती हैं। वो बंधता है, उदय में आता है और सत्ता में रहता है, फिर उनके 3-3 भेद होते हैं, बंध अबंध बंध विच्छुत्ति, उदय अंदय उदय विच्छुत्ति, सत्य असत्य और सत्य विच्छुत्ति, और ऐसा बहुत बड़ा विस्तार है। जो करुणानियों के अभ्यासी है ना, और उसकी बहुत गहराई में जाते हैं, तो वो यहां थोड़ा उस पर चोट कर रहे हैं कि भैया ये कर्म बंध के बारे में कितना तुम चिंतन करो, कितना ही विचार करो, उससे एक कर्म कटने वाला नहीं है। ये बात अवश्य है कि पाप कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि ये शुभ भाव है, लेकिन पुण्य कर्म का बंध होगा। ये बंधने का उपाय है, ये बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं है। ये 3 गाथाएं ये हैं और 3 गाथाएं इसके बाद की हैं। कल से अपन पाठ शुरू करेंगे। मैं एक किताबें लाया हूं 50 और कुछ फोटोकॉपी करा के भी लाया हूं, तो कल दे देंगे इन दीपक को, और ये लाकर के पहले पाठ करेंगे तो उन पाठ से आपको अंदाजा लगेगा। खैर मेरा तो गला ऐसा है नहीं कि मैं ढंग से आपको पढ़ के सुना सकूं, खैर में ना, तो उसके आपको अंदाजा लगेगा, जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है, मूल गाथाओं में और संस्कृत टीका में भी, कि तुम बंध के बारे में सोचते रहो, खूब चिंतन करो, मनन करो, उसका ज्ञान करो, तो बंध के ज्ञान से बंध कटता नहीं है। पहली गाथा में ये कहा, दूसरी में ये कहा कि उसका कितना काल है, इसका मतलब ये काल शब्द डालना, तो मैंने प्रकृति बंध, प्रदेश बंद और स्थिति बंद, ये कितने काल तक रहेगा जो कर्म बना है, फिर कब उदय में आएगा, कब फल देगा, कब खिल जाएगा, तो इसका तुम स्थिति बंद का विचार करते रहो, कैसा अनुभाग होगा उसका, तो इसके चिंतमन से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे। आगे की जो 3 गाथाएं हैं उनकी जो टीका है उसमें तो ऐसा लिखा है कि विपाक विचय नामक धर्म ध्यान के चिंतन से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, हम उन्हें समझाते हैं, ऐसा पढ़ा है संस्कृत में। देखो निकाल के बताऊंगा, हाँ देखो इसमें तुम्हारे बात 460 पेज है। एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांद बुद्धयो बोधन्ते, संस्कृत में है ना, संस्कृत की ढाई लेने की तो टीका है, 291 गाथा की टीका के अंतिम पंक्ति ढाई लाइन की टीका है बस। मिल गई ना। ये तीन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोधन्ते। इससे कर्म बंध के संबंधी चिंता मन चिंतमन, उससे विशुद्ध वो धर्म ध्यान है, विशुद्ध मन उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव। अपन कहते हैं ना भाव शोभ अशोभ और शुद्ध, तीन भेद करते हैं ना, तो दूसरे तरीके से के भेद होते हैं इसमें के पाप बताना और फिर विशुद्ध संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध, दोनों में शुद्ध तो कॉमन है लेकिन संकलेश परिणाम करते पाप परिणाम को मुख्य रूप से और पुण्य परिणाम को विशुद्ध कहते हैं और फिर शुद्ध है। तो विशुद्ध कहने से हमको ऐसा लगता है कि जरा ये शुद्ध से भी ज्यादा कुछ बढ़िया है, ये भी अलग ही है ना तो विशुद्ध हो गया लेकिन वास्तव में वो शुभ भाव है। तो कहते हैं इस ये धर्म ध्यान का एक भेद है। धर्म ध्यान के चार भेद होते हैं, नाम सुने कौन कौन होते हैं? आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय क्या है? ये खासकर चरणान योग में जो जिनेन्द्र भगवान ने ये बताया है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं और कितने कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन जीवों का ज्ञान इसलिए कराया कि तुम उनके साथ जीवों जैसा व्यवहार करो, पुद्गल जैसा अजीब जैसा व्यवहार नहीं करो। तो अब ये आलू में अनंत जीव है, हम तो बहुत देखा हमें तो दिखते नहीं है, कहते हैं नहीं कहते हम तो बहुत देखे हमें तो नहीं दिखते हैं। तो वो कहते हैं भगवान की आज्ञा है, इसका नाम है आज्ञा विचय। हम आलू खा रहे हैं ना तो एक पाप तो वो कर रहे, घबराना नहीं, मैं कोई आपको आलू छुलवाने नहीं आया हूं और उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा, और छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये बता रहा हूं कि उसमें हम दो पाप करते हैं जगदीश भाई, एक तो वो आलू के अनंत जीवों का घात होता है वो अलग, और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का विरोध कर रहे हैं वो अलग। क्या मतलब? यदि वो आलू के जीव थोड़े बड़े बड़े हो जाएं और वे चलते फिरते तुम्हें दिखाई दें तो फिर तुम खा सकते हो। एक कीड़े को इस पर चल रहा हो किताब पर और मैं आपसे कहूं कि इसे उठा के आप खा लो तो क्या खाओगे? पर क्या बकते हो? नहीं खा सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपके हृदय में करुणा तो बहुत है। यदि कोई जीव चलता फिरता दिखाई दे जाए तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी जयपुर में एक भाई आए, उन्होंने एक फिल्म दिखाई, मोटानी जी थे वहां, तो उस फिल्म में एक बूंद में जो पानी थे पानी की कितने जीव हैं, उनको कोई सौ गुना हजार गुना बड़ा करके दिखाया तो वो चलते फिरते बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसे थे। उस फिल्म को देखने के बाद अभी जी आप भी थे ना, लोगों को पानी पीना मुश्किल हो गया। देखिए ये कह रहे इनके पास है और कल दिखा देंगे आपको। अपने यहां जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है ना पानी छान कर पीना दोहरे सुनने से, तो उसमें कितने जीव हैं। अब वो जीव आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए तो आप नहीं पी सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आप में जीवों के प्रति अनंत दया है। चाइनीज जैसे नहीं है कि सांप को पकड़ाओ ककड़ी जैसा खा गए, ऐसा नहीं कोई भी कीड़े मकड़े को पकड़ाओ जिंदा खा गए,
ऐसी पोजीशन हमारी नहीं है, है ना। दया धर्म जो है वो हम में कूट कूट के भरा है, किसी जीव का घात हम नहीं कर सकते, और आलू के प्रति हमारे पास वैसा भाव नहीं है। किसी सब्जी में लट निकल आती है ना, तो लट निकल आए तो हम वो उतना हिस्सा काट के पूरा फेंक देते हैं, हमको देख नहीं सकते, अगर वो सब्जी हमसे खपती नहीं है। दया भाव तो हमारे अंदर इतना है। और भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा, तेरी आलू की सुई की नोक पे एक दाना निकालो, उसमें अनंत शरीर है, एक जीव में अनंत जीव है। तो हमको इस बात पे भरोसा होता, पर आगम रूपी चक्षु से हमें वो जीव दिखाई दे जाते तो हम गारंटी से उस जीव का हम नहीं खा सकते थे। इसका मतलब हमें भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है, हमें तो आंख से दिखाओ, ऐसा ही अर्थ हो गया ना। तो हम किस किस चीज में आंख से दिखाएंगे। तो वो कहते हैं कि भगवान की वाणी में जिन पदार्थों को अभक्ष कहा है, बस हमें तो उन्हें नहीं खाना, हमें किसी से कोई बहस नहीं करना। माने ये बहस करना, कमल जी, भगवान की वाणी सत्य है कि झूठ, इस पर बहस करना है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय भवन था, वहां विराजते थे सोनगढ़ में, और उनका भोजनालय था, वहां भोजन करने जाते थे। तो बरसात में खासकर वो इतने इतने पत्थर रखे हुए थे, अभी भी हमारे और आपके दिमाग में वो पत्थर झूलते हैं, वो दृश्य दिखाई दे रहा था, ऐसे थे। तो उन पर पैर रख रख के गुरुदेव जाते थे, और जब लोग हम तुम जैसे लोग 10-5 लोग उनके साथ रहते थे, तो वे उनके साथ जाते थे, तो हरेक को गुरुदेव के बगल में चलने की बहुत रुचि होती थी, और सामने फोटोग्राफर हो गए फिर तो कहने ही क्या है। फिर तो एक आदमी भी पीछे नहीं रहना चाहता है, तो बगल में आकर गुरुदेव के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो गुरुदेव एकदम खड़े हो गए और उनका पीछे चलो, तुम्हें मालूम ये जो यहां पर नीमड़ा के फूल पड़े हैं, इन फूलों में तुम्हारे पिछले भवों के, कई भवों के मां बाप हो सकते हैं, और सिद्ध भगवान हो सकते हैं, है ना। मैं ही कह रहा हूं ना, आप क्या कहेंगे बोलो, यही तो कहना, यही आप कहेंगे। ये भाग्यशाली उसमें ये विपिन भाई है जिनके साथ वो घटना घटी थी, क्या समझे ना, घटना तो मैं सुना ही रहा हूं, वो ये साक्षी है। तो उन्होंने कहा पीछे चलो, इसमें अनंत जीव पड़े हैं, और उन्होंने उसको और सेंसिटिव बनाने के लिए, तुम्हारे पिछले भवों के मां बाप भी इनमें हो सकते हैं, तो तुम मां बाप के पैर ऊपर पैर रखते जा रहे हो, और उसको और अधिक सेंसिटिव बनाने के लिए कि कदाचित तुम्हारे मां बाप ना भी हो, लेकिन उसमें निगोदिया में भविष्य के सिद्ध भगवान तो हैं ही, गारंटी से ना, अनंत सिद्ध इनमें है। तो वहां चलने वाले किसी के मुंह से निकल गया, कौन है जाने क्या है? ये बात कौन है देखे समझ लो, हाँ कौन है जो यू, ये बात किसने कही होगी, विचार करो, आप बता सकते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, इतना तो बता ही सकते हैं कि किसी गुजराती ने कहा होगा, हिंदी वाला होता तो कहता किसने देखे, कौन है जो यो नहीं कहता। तो तो गुरुदेव एकदम आंख बदल के और गुस्से में तम तमा करके बोले, क्या बोलता है ये? केवल ही भगवान का अपमान है, क्योंकि हमने थोड़ी देखे हैं, तो केवल ही भगवान ने देखे हैं। तू ऐसा प्रश्न करता है तो तू केवली पे शंका कर रहा है, वो जिनवाणी पे शंका कर रहा है, उनकी वाणी पे। और हमारे गुरुओं ने हमें बताया, उसमें तीनों आ गए देवसास गुरु, क्योंकि जिस किताब में ये लिखा है वो हमारे गुरु थे, माने आचार्य उपाध्याय और साधु में से कोई थे। और जिनने ये बात कही थी समोसन में बैठकर, वे देव थे। और जिनमें लिखा है उनका नाम है शास्त्र। तो तीनों में हमारी अश्रद्धा हुई, तो ये उस जीवों की मृत्यु से ज्यादा भयंकर पाप है। वो एक इंद्रिय जीव मर गया, एक उसकी वजह से हम अनादिकाल से मृग निगोद में नहीं है। लेकिन ये देवसाज गुरु पर अश्रद्धा रूप मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के कारण हम अनादिकाल से संसार में हैं। बोलो बड़ा पाप कौन है? कौन है जो समझे? अब ये हमारी समझ में ही नहीं आता है कि इसमें हमने कौन सा पाप कर लिया और गुरुदेव हम पे नाराज हो रहे हैं। यदि इतना खोल के नहीं बताया जाए तो ये समझ में ही नहीं आता हमारी, तो क्या गलती हो गई हमसे कि हमको बगल में आ गए, हमें पीछे खड़ा रहना चाहिए था। क्यों? कि कैमरे में फोटो हमारा आ जाए इसलिए आ गए। अरे ये नहीं, तूने उस जनवाणी पर श्रद्धा की, केवली भगवान की वाणी पर श्रद्धा की, अपने गुरुओं की वाणी पर अश्रद्धा की। तो इसको श्रद्धा पूर्वक चरणान योगों के इसके शास्त्रों का अध्ययन करना और उसे पक्का जानकर मानकर यथासंभव जीवन में अपनाना, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। ख्याल में आई ना? अब उपाय विचय बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसी का दूसरा नाम है अपाय विचय। अपाय विचय माने मुक्ति का मार्ग क्या नहीं है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो इनके बारे में विशेष चिंतन करना, विचार करना, उसका नाम है उपाय विचय या अपाय विचय नामक धर्म ध्यान। अब विपाक विचय, कर्म का बंध कैसे होता है, वो कर्म का उदय कैसे आता है, उदय के आने पर हमारी क्या क्या दशाएं होती हैं, कैसे कैसे संयोग मिलते हैं, है ना? ये विपाक विचय, कर्म का विपाक कैसे क्या होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। अब चौथा कौन सा है? संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। तो ये तीन लोक का कैसा संस्थान माने आकार है? तो कहते पुरुषाकार है ना, कमर पे हाथ रखे हुए। फिर जम्मू द्वीप कैसा है, ढाई द्वीप कैसा है, तेरह द्वीप कैसे हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं, ये सारी भूगोल की रचनाओं पर विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम क्या है? संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। अभी यदि हम इसको अब अनुयोगों के रूप में देखें तो चरणानुयोग हो गया, फिर एक करुणानुयोग हो गया विपाक विचय, ये कर्म फिलोसफी, फिर संस्थान विचय भी करुणानुयोग हो गया, फिर ऊंचा उपाय विचय में तत्वा सूत्र वगैरह जैसे ये सारे ग्रंथ हो गए जो मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। अध्यात्म ग्रंथ भी समझ लो, उनमें ही आते द्रव्यान योग में। तो ये तीन अनुयोग आ गए, कौन? द्रव्यान योग, करुणान योग और चरणान योग। तो प्रथमान योग है आज्ञान, उसे भी आज्ञा विचय में कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो कहानियां हैं दिनेश भाई, ये कहानियां हमने देखी नहीं है, देख सकते नहीं है, ये भगवान की आज्ञा से ही माननी पड़ेंगी। आदिनाथ से लेकर महावीर तक थी, माननी पड़ेंगी ना। तो चारों प्रकार के जो हमारे अनुयोग हैं उनका गहरा स्वाध्याय करना, इसका नाम ही क्या हो गया, धर्म ध्यान। तो हम जो स्वाध्यायी लोग हैं एक तरीके से सब धर्म ध्यान वाले हैं। आर्थ ध्यान मैं बोलता हूं, फिर बाद में आप बता देना मुझे, तो कल बता दूंगा मैं सबको, कोई विकल्प आ रहा बताओ, अब बताऊंगा मैं, इसलिए तो सारे रामायण बता रहा हूं। ये कह रहे अंधबुद्धि क्यों कह रहे हैं उन्हें, कि उसके लिए तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि वे किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें पता तो पड़ा ना। अब धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है, एक निश्चय धर्म ध्यान और एक व्यवहार धर्म ध्यान। तो वास्तव में ये व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान तो पांचवें छठवें सातवें गुणस्थान के योग जो शुद्ध शुद्धोपयोग हम कह सकते हैं उसे, मैं भाषा से घबराता हूं, समझे ना, आत्मानुभूति कह लो आप, निश्चय धर्म ध्यान तो वो है। अब निश्चय धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है, कि वो सातवें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ने के योग्य, इतनी अंदर की जो शुद्धता विशुद्धि बढ़ गई, वो बढ़ गया क्या नाम शुद्धोपयोग, तो उसको हम शुक्ल ध्यान शुरू कर देते हैं ना, जहां से शुरू होता ना, आठवें से शुरू होता है, कहां से होता है शुक्ल ध्यान, तो वो उसको हम शुक्ल ध्यान कहेंगे। अब उसके पहले भी तो शुद्धोपयोग होता है ना, आत्मानुभूति होती है ना, तो वो सब हो गया निश्चय धर्म ध्यान। तो हमारी भूमिका में शुक्ल ध्यान तो संभव ही नहीं है, और आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे करने योग्य नहीं है, होते हैं हमारे ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं, अज्ञानियों के तो होते ही हैं, अज्ञानियों के तो होते ही होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी आर्द्र रौद्र ध्यान देखे जाते हैं। कौन से शास्त्रों में आता ना, फिर पांचवें गुणस्थान तक होते हैं रौद्र ध्यान और ध्यान भी, फिर एक निदान नाम के छोड़ करके ऐसे कोई आता ना, इतने छठवें तक होते हैं, जो भी करुणानी योग में मर्यादा बताई है उसके हिसाब से, तो सम्यक दृष्टि के भी होते ही हैं, लेकिन वे करने लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें धर्म नहीं कहते, धर्म ध्यान नहीं है वो। तो हमारा जीवन हर मुमुक्षु का, जिनमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद राम रायचंद जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छावड़ा, ये सब शामिल हैं, ये धर्म ध्यान वाले जीव हैं, चार ध्यानों में, तो वो तो धर्म ध्यान हमारे जीवन में है ही, और आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान भी है, लेकिन वे हे हैं ऐसा भी हम सब लोग जानते और मानते हैं, भगवान की आज्ञा से ही सही, क्योंकि उनने लिखी ना कि ते हे हैं, तो हमने हे मान लिए, भले ही मजा उसी में आता है क्यों? अब मजा उसमें कैसे आता है, अब उसके डिटेल में जाऊंगा तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब हम ध्यान की चर्चा कभी करेंगे तो उस विशेष उनका विशेष विचार गंभीरता से करेंगे। इतना आप समझ लो, वे तो हे हैं जैसे भी हैं, और हम मानते भी हैं, तो हम धर्म ध्यान। अब वो कहते हैं कि शुद्धोपयोग उससे कर्म करते हैं, शुद्ध परिणति से भी। एक और मरम की बात मैं बता देता हूं, हालांकि इसी जिस करुणानी योग को यहां पर उससे अंधबुद्धि कहा जा रहा है, उसी के सहारे से ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या इन करुणानी योग के हिसाब से जो गुणस्थानों में बंद विच्छुत्ति बताई है, ये तो जानते हैं ना, सब बंद बिच्छुती किसे कहते हैं मोटा मोटा। नए नए लोग आए होंगे, थोड़ा मैं बताता हूं कि ये कर्म है ना, तो इन कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं, उस प्रकृति में बंधने योग्य सिर्फ 120 प्रकृतियां हैं। अब क्यों और कैसे उस झगड़े में अभी नहीं पड़ते हैं। बंधने योग्य 120 प्रकृतियां हैं, तो और वो कहां कितनी बनती हैं, तो पहले गुणस्थान में 117 उन बंधने योग्य में 117 बन सकती हैं, वो तीन नहीं, तीर्थंकर प्रकृति, आहारिक के शरीर और आहारिक वो जो भी है दो है, आहारिक दुख बोलते जिन्हें त्रिक दुख, हाँ दुख दो आहारिक दुख, तो वो तीन प्रकृतियां नहीं बनती हैं। फिर आगे आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान से निकले तो 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ती हो जाती पहले में निकलते ही, दूसरे में 25 की हो जाती, तीसरे में 4 की हो जाती, तो चौथे गुणस्थान में आएगा तो इतनी प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं, तो इनको बोलते बंध विच्छुत्ती, माने इनका बंधना बंद हो गया। तो चौथे गुणस्थान में जो ये प्रकृतियों का बंधना बंद हो गया ना, करीब 41 प्रकृतियां हैं साथ, 41 में कितनी हुई, तो ये प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं, तो इतनी प्रकृतियां बंधना बंद हो गई तो वो चौथे गुणस्थान वाला सामायिक कर रहा हो तब भी इतनी प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, प्रवचन कर रहा हो तब भी इतनी प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, और भोजन कर रहा हो, लड़ रहा हो युद्ध के मैदान में, हथियार चला रहा हो, पंचेंद्रिय सैनी मनुष्यों की हत्या कर रहा हो, है ना शास्त्र में उदाहरण राम जैसे आदि लोगों का, तो भी वे 41 प्रकृतियां नहीं बनेंगी। उसमें ये भेद नहीं है कि शुद्ध उपयोग के काल में नहीं बनेंगी, अशुभ उपयोग के काल में बनेंगी, अशुभ उपयोग के काल में बनेंगी। तो ये बंधने का और नहीं बंधने का नियम शुद्ध परिणति से है, शुद्धोपयोग से नहीं है। उसे मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कषाय से रहित जो शुद्ध परिणति हो गई है, पर उसकी वजह से वो नहीं बंध रही। अब वो कितनी उदय में आ रही, कितनी खिल रही, वो बहुत लंबा विस्तार है। तो मान लो उधर निर्जरा भी हो रही, आता ना सम्य दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु हैं, और असंख्यात गुणी निर्जरा बोलते ना, सम्य दृष्टि साधक वृत्तानंद भी हो जाए, तो वो भी जो असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है उसमें भी ऐसा कोई भेद नहीं है। इसका मतलब यह है कि बंधने और नहीं बंधने का नियम शुद्ध परिणति से है, शुद्ध उपयोग से नहीं। अब हम उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। अब अभी मैं समझा रहा हूं, तो अभी मैं भी वही बता रहा हूं, क्या हमारी मजबूरी है, क्या करें, क्यों शुद्ध उपयोग से होगा, शुभ उपयोग से नहीं होगा, अशुभ उपयोग से बंद होगा, शुभ उपयोग से नहीं होगा, अशुद्ध उपयोग से होगा, ये कथन है। तो उपयोग की, जब उपयोग की बात आती है तो हम भी वो उपयोग की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि परिणति से क्या होता है, उसकी कोई कीमत ही नहीं दिखती हमारे लिए, तो सारा काम तो उससे हो रहा है। अब हम जरा जरा सी बात पे रोते हैं, क्या रोते हैं कि जरा सा पाप भाव मन में आ गया तो हाय राम हाय तोबा मचा देते हैं, लेकिन वो हमारे गुणस्थान के योग्य आया है। चौथे गुणस्थान में जितना आ सकता है उतना ही आया है, कि वो कितना कितना चींटी को मार दूं, ये इतना आए तो गया काम से, तो कितना था चींटी को मारने का भाव आए तो गया काम से, लेकिन सगे भाई पर चक्र चलाए तो इतना भाव आ सकता है, जैसे बाहुबली पर भरत ने चला दिया। साक्षात सैनी पंचेंद्री को भी नहीं मारा भाग्य से, और मर भी सकता था, रावण मर गया ना, बहुत से लोग विरुद्ध में जो थे वो मर भी गए ना युद्ध के मैदान में, सम्यक दृष्टि से वो मर गए सामने युद्ध में। कि ये आजाद इस चलेगा जगदीश भाई, वो चींटी को नहीं चल सकता। मोटा नजी आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, क्यों दिनेश भाई? क्यों कि वो तो विरोधी हिंसा है, वो हमारे सामने खड़ा है, हमने मारे तो वो मार देगा हमें, और ये तो विरोधी हिंसा नहीं है। उस चींटी ने आपका क्या बिगाड़ा? चुपचाप जा रही बेचारी, और तुमने पैर रख करके मसल दिया। अपने गृह धर्म में है ना, आरंभी उद्योगी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है ना, वो आप संकल्पी हिंसा है, और आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है हम। वो थोड़े तो आरंभ माने समझते हैं क्या होता है, ये खाना माना बनाने में जो घर में जो धंधे में घर के कामों में जो हिंसा होती है ना उसे बोलते हैं आरंभी, और धंधो पानी में होती है उसे बोलते हैं उद्योगी। मान पुरुषों के द्वारा की जाती है उसे बोलते हैं उद्योगी, और महिलाओं के द्वारा की जाती है उसे बोलते हैं आरंभी। मोटा मोटा बरीकन समझ लेना है, चूल्हा चक्की है। अब पुरुषों में महिलाओं को छोड़ दो, अब ये कई ब्रह्मचारी हो गए और सब घर छोड़, ब्रह्मचारी लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं है? लेकिन एक बात उसके बिना तत्व तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए देता हूं। मेरी दृष्टि में कोई ब्रह्मचारी नहीं है जिसके लक्ष्य से मैं ये बात कह रहा हूं, आप समझे ना। तो अभी उन्हें घर बार छोड़ दिया, अपने समझ लो सोनगढ़ ग्रुप के ब्रह्मचारियों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो बताऊंगा अभी, समझे ना। लेकिन जो और ब्रह्मचारी हैं वो घर छोड़ देते हैं, एक दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, और फिर कमाना तो बहुत दूर, वे बना करके भी खाना नहीं चाहते हैं, और पूरी तरह समाज पर डिपेंड हो जाते हैं, और कहीं समाज उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए तो फिर देखो कितने आग बबूला होते हैं। समाज उनकी व्यवस्था करती है, इसमें समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, मैं वो कोई उसको बुरा काम नहीं समझता हूं, समझ गए ना। लेकिन वो ब्रह्मचारी अपने शास्त्रों में ये है कि आरंभ त्याग प्रतिमा जब तक नहीं है तब तक वो दूसरों के कंधे पर अपना रोजीना के भोजन का बोझ नहीं डाल सकता, उसे बनाकर भी खाना चाहिए और कमा करके भी खाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। जब वो आरंभ त्याग प्रतिमा में परिग्रह त्याग प्रतिमा में आता है तब जाकर के इन चीजों पर थोड़ा प्रतिबंध लगता है। अब वो ना पहली प्रतिमा है ना दूसरी है ना तीसरी है, और सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य है ना, उसका तो नाम ही नहीं है, प्रतिमा नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर अकेला चदरा ओढ़ा है ना, ये कुर्ता धोती टोपी छोड़ी है, और वो अपने को ब्रह्मचारी समझ के फिर अपने को साधु समझने लगता है, और फिर उपदेश देने लगता है कि तुम गृहस्थों को ये चाहिए, साधकों का ये कर्तव्य है। एक दफे मैंने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज जी आप कौन हैं? धर्म दो प्रकार का है, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म, तो आप कौन से धर्म में हैं? मुनि होते तो नग्न दिगंबर होते दिगंबर धर्म के हिसाब से, अब वो तो आप हैं नहीं, तो गृहस्थों को चाहिए माने आपको बना के खाना चाहिए और कमा के खाना चाहिए, और आपकी व्यवस्था इन्हें करना चाहिए। तुम गृहस्थों को माने हम साधु हैं, तो उनके साथ बैठ गए। तो मैंने लिखा धर्म के दर्शन किताब में आज एक 30-40 वर्ष पहले गुरुदेव की उपस्थिति में ये लिखा है कि साधुओं को जंगल में रहना चाहिए, वनवासी होना चाहिए, और गृहस्थों को गृहवासी होना चाहिए। अब दोनों वनवासी न वन में रहते हैं न गृहवासी घर में रहते हैं, दोनों एक साथ धर्मशाला वासी हो गए हैं।
क्या?
और महावृत्तियों का बोझा अनुवृत्तियों को उठाना चाहिए, समझ रहे ना, क्योंकि अनुवृत्तियों का भोजन और महावृत्तियों का भोजन एक साथ शुद्ध होता है, तभी उनका उद्दिष्ट त्याग निभेगा, क्योंकि वे अपने लिए भी बनाएंगे तो वैसा ही का वैसा भगवान महाराज मुनिराज को खिला सकते हैं। तो अनुवृत्तियों को महावृत्तियों का भोजन अनुवृत्तियों को व्यवस्था करना चाहिए था, अब वे दोनों आहार देने वाले नहीं लेने वाले हो गए हैं, तो फिर कौन करे उनको भी व्यवस्था, बोलो फिर समय चौथे गुणस्थान वाले करें। अब धीरे धीरे चौथे वाले गुणस्थान वाले भी खिसक के उधर ही बैठ गए, क्यों, किसी को समय दर्शन हो जाए तो वो भी उसी टोन में आ जाता है, हो जाए माने होने का भ्रम हो जाए, जैसा कि बहुतों को होता है जगदीश भाई, तो वो भी कहें तुम लोगों को ये करना चाहिए, तुम गृहस्थों को, वो हमें गृहस्थ बताता है तू कौन हो, वो हम जैसा गृहस्थ होने पर भी बाल बच्चों वाला घर में रहता है और वो हमको, फिर वो भी उस पाटे पे बैठ जाता है, वो भी कहता है तुम्हारी ड्यूटी ये है, तो अब सुनना दृष्टि से ऊपर के सब आहार लेने वाले हो गए, ध्यान से सुनना, तो देने वाले कौन हो गए फिर, क्यों मिथ्या दृष्टि, तो विरोध करने वाले कौन होंगे सर, मिथ्या दृष्टि सम्मा दृष्टियों का विरोध तो मिथ्या दृष्टि करते हैं ना, यही करेंगे ना, तो विरोधी दल में रहेगा ही नहीं फिर, तो ऐसी लोकसभा कहीं होती है कि जिसमें विरोधी दल हो ही नहीं, है? नहीं होती है ना, तो इसलिए आज तो सारे ही विरोधी दल है, कि जिनकी गवर्नमेंट है यहां गवर्नमेंट में भी शामिल है, वहां गवर्नमेंट को गालियां भी दे रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे लोग, यदि गवर्नमेंट ने कोई पाप किया है तो सारे पापों में तुम शामिल हो, कैबिनेट में हो, कैबिनेट में पास हो के गए ना, वो सब बिल के वाई साहब, यदि किया है कहीं कोई बड़ा अच्छा काम हुआ है तुम शामिल हो, हम बस हम दोनों ही फायदा लेंगे, चुनाव में जाएंगे तो हमने तो विरोध किया था, हमने तो कहा था ये मत बढ़ाओ, हमने तो ये कहा था, तो तुमको पार्टी का भी लाभ लेना है और विरोधी पार्टी का भी लेना है, क्यों, तो अब क्या करेंगे, तो आखिर क्या हो गया, माने वस्तु स्थिति ये है कि वो आरंभ त्याग, वो खुद भी जब तक खाना बनाएगा तो चूल्हा चक्की सब होंगे ना, ये होंगे तो इनमें जो हिंसा होती है उसको आरंभी हिंसा बोलते हैं, और जो खाने पीने के लिए हमें धंधा करना पड़ता है उसमें जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा है, कि हम उद्योग थोड़ी चलाते हैं, हम तो नौकरी करते हैं काय में कि उस कंपनी में, तो भैया वो सेठ जी उद्योग चलाते हैं लेकिन उद्योग चलाने में तुम सहयोग करते हो ना, तो उसमें जो हिंसा होती है चाहे पैसा लेके करो चाहे बिना पैसा लेके, उस उद्योगी हिंसा की भागी तुम भी हो, ये तुम ये मत समझना अकेले उद्योगपति हैं बड़े बड़े दो चार पांच टाटा बिरला और अब अंबानी और हो गए समझ आपके, तो ये उद्योगी हैं और इनको उद्योगी हिंसा होती होगी, ऐसा नहीं है, ये जो कमाने में जो हिंसा होती है वो सब उद्योगी हिंसा है, और खाना बनाकर खाने में वो सब, तो तीन प्रकार की हिंसा का त्यागी ग्रस्त नहीं है, और संकल्पी हिंसा का त्यागी है, तो वो चिंटी मारने में संकल्पी हिंसा है, समझ गए ना, और इनमें से तीन में से कोई ना कोई एक आएगी, आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा, तो हमको पता ही नहीं है, ये कहते कैसा धर्म है ये, कैसा पंडित है, चिंटी के मारने में तो कहता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल महापापी हो गए, और इसमें युद्ध के मैदान में सामने शत्रुओं को मार रहा तो कुछ नहीं कहते हो, तो यदि आप स्वरूप समझे उसका तो आपको ख्याल में बात आएगी, और नहीं आते ही समझ में तो भगवान की वाणी है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होगा, अब तो चारों ही प्रकार का जो धर्म ध्यान है उसके बारे में जिनकी बुद्धि अंध है, माने इसमें ही वे कह रहे लगे हुए हैं और इससे ही हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, वे अंध बुद्धि वाले हैं। लेकिन यहां पर विशेष कर करुणान योग के अभ्यास करने वालों को लिखा है, क्यों घबराना नहीं। मतलब मैंने पहले ही कह दिया कि सभी हैं शामिल, लेकिन उन्होंने यहां क्योंकि कर्मबंध, कर्मबंध की चिंता लिखा ना, जो कर्मबंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान, तो ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। इससे अंध है बुद्धि जिनकी, तो उनका करुणानियोग वालों से क्या झगड़ा था, उनके ही क्यों लिख दिया। तुम यहां से पूछना चाहता हूं चारों का, अरे चारों ही का है, मैं तो कह रहा हूं ना, आप क्यों घबरा रहे हो कि तुम तो डरपोक हो इसलिए कह रहे हो। नहीं, फैक्ट है भाई साहब, वो जो सबको ही कहना चाहते हैं, लेकिन करुणानियोग का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि पिछले बंधाधिकार में उसकी चर्चा चल रही थी। क्या वो बंध बंध की बात चल रही थी ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि इससे हो गई है अंधबुद्धि। माने अंधबुद्धि हो गई का मतलब क्या हो गया, करुणानियोग के पढ़ने से अंधे कैसे हो जाएंगे, करुणानियोग के पढ़ने से अंधे कैसे हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे कि हमने वो काल देखा है, पूज्य गुरुदेव श्री के का काल तो अपन ने देखा ही है, एक साथ ही देखा है, लेकिन उसके पहले क्या होता था वो भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा है, क्योंकि हम उस समाज में रहते थे, वो वहां देखा है। बर्नी जी की आत्मकथा में लिखा है, देखो नाम लोग के कह रहा हूं मैं, घबराना नहीं, कोई ऐसी बातें ही नहीं कह रहा हूं जिसमें खतरनाक हो। कि एक बार चिरुंदा बाई थी उनकी धर्म माता समझते हैं, उनकी असली माता नहीं थी, उनने बर्णी जी को धर्म में लगाया था, बर्णी जी तो अजैन थे, और फिर उनको पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था की थी, धर्म पढ़ने की सारे बहुत सहयोग किया था, तो उनने मां बेटे जैसा व्यवहार हो गया था। तो उन्होंने कहा माता जी क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं चरणान योग का स्वाध्याय कर रही हूं। क्या कर रही थी वे गेहूं साफ कर रही थी, कि चरणान योग का स्वाध्याय कर रही हूं। तो उस वक्त उसकी चर्चा करके पुराने पंडित लोग हमें बहुत सुनाते थे कहानी के साथ, तुमने भी सुने होंगे उन पंडितों के मुख से, उनके जो भगत पंडित हैं, कि देखो कितनी महान थी कि वो गेहूं साफ करने में भी उन्हें चरणान योग का स्वाध्याय दिखता था, यानी वे तो 24 घंटा स्वाध्याय में ही लीन थी। पर धीरे धीरे वो गेहूं साफ करना, फिर चने साफ करना, वो सब हो गया चरणान योग का स्वाध्याय, फिर वो अनागार धर्मामृत छूट गया, वो सागर धर्मामृत छूट गया। क्या मतलब ये कहना चाहता हूं कि वो ऐसा स्वाद, ऐसा करुणानियोग का स्वाध्याय, कि वो जो कर्म की चर्चा प्रहोत्सवी कर रहे हैं, जो अपने यूनिवर्सिटियों में होते हैं ना विशेषज्ञ प्रोफेसर, तो इकोनॉमिक्स का होता है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कॉमर्स का होता है वो कॉमर्स पढ़ाता है, हिंदी का होता है प्रोफेसर तो हिंदी पढ़ाता है, संस्कृत वाला संस्कृत पढ़ाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश, वो एक एक बात के विशेषज्ञ होते हैं और बाकी सब बातों में कॉमन होते हैं। तो ऐसे ही कोई करुणानियोग का विशेषज्ञ है, कोई धर्मानियोग का है, कोई धर्म है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पहले आचार्य चारों अनियोगों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, द्वादश अंग के पास ही थे ना, फिर नहीं रहे ऐसी सामर्थ्य किसी की कि वे चारों के हो जाएं, तो हमने एक एक अनियोग के विशेषज्ञ होके आचार्यों ने उनको अनियोगों को तो बचा के रखा, समझना मैं क्या कह रहा हूं, तो वे हमारे प्रति बहुत अनंत उपकारी हैं, लेकिन वो ये कह रहे कि इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, अब हम ये करके ही वे संतुष्ट हैं और उन्हें हमें आत्मा का अनुभव करना बहुत जरूरी है, शुद्धोपयोग में जाना बहुत जरूरी है। ये बात जिनके ध्यान में से निकल गई उनको कह रहे कि ये अंधबुद्धि वाले हैं, समझे ना। कर्मयोग के स्वाध्याय करने वालों को नहीं, अन्यथा यदि वे अंधबुद्धि वाले होते तो द्वादशांग के पाठी तो सबसे बड़े अंधबुद्धि वाले होते, क्योंकि वे चार मन योगों के स्वाध्याय के में विशेषज्ञ हैं और उनका अध्ययन अध्यापन करते, उनको पढ़ते पढ़ाते हैं, लिखते लिखाते हैं। ये मुझे कभी कभी भगवान जी विचार आता है कि कुंद के समय में और अमृतचंद्र के समय में और जयसेन के समय में, जयसेन तो इससे भी आगे कड़क है, जयसेन आचार्य जी ने जो लिखा है मैं सुन के पढ़ के सुनाऊंगा कल, इसमें इसमें है सब, मैं बताऊंगा आपको, आपके हाथ में भी किताब होगी कि वो कितना कड़क लिखते हैं। इससे इनके जमाने में भी ऐसे लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, जैसे गुरुदेव श्री के जमाने के पहले थे। हमने देखा है कि करुणान योग का जो विशेषज्ञ थे समाज उनको ही विद्वान मानती थी। हमारे गुरुदेव गुरुजी थे ना जो हमें पढ़ाते थे, पंडित नंदनलाल जी सिद्धांत शास्त्री, तो वो कहते थे हमसे कि नोकदार टोपी लगाने से काम नहीं चलेगा, विद्वान बनने पड़ेगा, विद्वान एक करुणान योग का गोमर सार का बहुत बढ़िया ज्ञान करना पड़ेगा बेटा, तब समाज तुम्हें पंडित मानेंगे। ये साल में चार पांच दफे हमको ये बता देते थे, जब जब हमारी टोपी धुल के साफ होती थी, नोकदार होती थी, तब तब एक उस वक्त क्वालिटी नहीं, डिसक्वालिटी मानी जाती थी। पंडित लोग टोपी तो लगाते थे लेकिन टोपी को ऐसी घड़ी करके जेब में रख लेते थे और फिर ऐसी गुड़मुड़ी निकाल के और ऐसी लगाते थे जिसमें 25 गुणी होती थी माँ पहनाते हुए। तो ऐसे जब अपन हमारे पास भी लोहा मोहा तो नहीं था, टोपी को बना बनू करके लोटे में अग्नि डालकर, लोटा समझते पानी, उसमें थोड़ी अग्नि डालकर और उससे फेल लिया करते थे हैं। तो वो उतनी नोक वाली टोपी भी हमारे गुरुजी को बर्दाश्त नहीं होती थी हैं। बोलते टिप टॉप रहते हो, टिप टॉप रहना मानते थे। इसलिए तो कांजी स्वामी को बहुत इस बात की भी बहुत आलोचना होती थी। हेमचंद जी आप जानते होंगे, एकदम सफेद झक दुपट्टा, हमारे यहाँ के ब्रह्मचारियों का तो बिल्कुल मेला कुचैला ऐसा कि जिंदगी में धुलाई नहीं हो, बस एक दफे जो पहना तो पहना, साबुन लगाने में तो पाप है तो शुभ नहीं, वैसे ही धोके निकलती है। मंदिरों की धोतियां भी ऐसी होती थी है ना, एक दफे धुली में बाद में फिर वही पानी में डूब डूबो के निकालते रहते थे, बिल्कुल मैली कुचैली गंदी, तो उनको ही मानते थे कि बैरागियों की ड्रेस है, समझे ना। और अपने सौंदर्य के ब्रह्मचारी झकाझक गुरुदेव झकाझक रहते थे ना एकदम, तो वो इस बात की आलोचना करते थे। सुधा सागर ने जयपुर में भी भरी सभाओं में बोला कि वो पंडित हुकुमचंद ऐस आराम वाले, नोकदार टोपी वाले, और उनकी जो प्रश्न करने के लिए कुर्सी कुर्सी पे बैठ के करते हैं, वो कुर्सी अमेरिका से आई है, अमेरिका से भरी सभा में। इन्हें कब देखी कि सत्य महावृत है कि मेरी एक कुर्सी अमेरिका से आई है भरी सभा में बोला था 10,000 लोगों के बीच में, लोग मेरी कुर्सी देखने आए 10-20 तो तो मेरे कहने का मतलब इसको टिप टॉप मानते थे लोग। तो करुणान योग के विद्वानों को इनकी गिनती के थे, रतन चंद मुख्तियार और ऐसे थे 2-4 लोग, ये बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े मोक्ष मार्गी, सबसे बड़े प्रमाणिक वक्ता, और वही वही छाए रहते थे, समझे ना। तो वो ऐसे लोग और ऐसे अमृतचंद के समय में भी रहे होंगे, रहे थे, होंगे नहीं। सुनो सुनो पूरी बात सुनो मेरी, मुझे बोल लेने लो। कुंद के समय में भी रहे होंगे, घबराना नहीं है। देखो बहुत तत्व समझना हो तो कुंद कुंद के समय साल लिखने के पहले ही 15-25-50 वर्ष पहले सरखंडागम लिखा गया था और उसी का पठन पाठन का जोर था। गुजरात की गुफाओं में बैठे धर्मसेन ने दक्षिण भारत से मुनि वो करुणान योग पढ़ने के लिए बुलाया था तो उसको तो पढ़ करके जब उन्होंने लिखा होगा और जब उनकी पूजा हुई होगी जो जो सुरत पंचमी मनाई जाती है ना तो वो वातावरण बना होगा उस वक्त ऐसे लोग हो गए हों कि जो उसको जानते होंगे वो मैं चौड़ा और बाजार सिकड़ा तो कुंद कुंद के जमाने में ऐसे लोग हो गए होंगे तो उन्हें देख करके उन्होंने उनको समझाने का विकल्प आया इसलिए खासकर उन्होंने करुणा योग पर ध्यान दिया। ख्याल नहीं ना और उन्होंने लिखना पड़ा कि क्या लिखा है और अंधी बुद्धि कैसे हो गई कर्म विशुद्ध धर्म ध्यान से अंधी बुद्धि जिसकी हो गई समझ गए आप। अब फिर अमृतंत के पास आए तो उसके पहले वीरसेन स्वामी हुए थे वो वैसे ही भूतबरी धर्मसेन जैसे ही दिग्गज जिन्होंने जय धवल महाधवल है और वो क्या नाम जय धवला महाधवला धवला लिखे थे और उस वक्त भी खूब उनका प्रताप चल रहा था सब जगह हैं तो उस वक्त भी लोग ऐसे ही हो गए होंगे कि मैं चौड़ा और बाजार छपड़ा तो उनको फिर एक टीका की पंक्ति लिखनी पड़ी। अब मेरा मतलब समझ गया ना। देखो वीरसेन स्वामी और भूतबली पुष्दंत मैं उनका उतना ही बड़ा भगत हूं जितना बड़ा भगत कुंद कुंद और अमृतचंद का हूं। मेरी दृष्टि में रंच मात्र भी उनका स्थान कम नहीं है। मतलब गलत नहीं समझना क्या कि मैं वीरसेन स्वामी को और मैं भूतबली पुष्दंत को धर्मसेन स्वामी को कोई दो नंबर का मुनिराज मानता हूं आचार्य मानता हूं। बिल्कुल वे प्रथम श्रुत स्कंद के हैं और वे प्रथम श्रुत स्कंद के ही हैं और कुंद कुंद द्वितीय श्रुत स्कंद के हैं आचार्य है ना। लेकिन ये उस समय समाज में चलती हुई प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूं। क्या यदि आपको समझना है तो बहुत पवित्र हृदय से बात सुननी और समझनी पड़ेगी और लड़ना है तो मैं बंद कर सकता हूं यहां तो कोई नहीं लड़ेगा मेरे से लेकिन सारे देश में लोग लड़ सकते हैं इस बात पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अकेले करुणान योग के बारे में नहीं समझना मैं तो कहता हूं चारों ही अनुयोग के बारे में पढ़कर और ऐसा समझने लग गया हूं कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा तो वे बहुत धोखे में है। और मैं कई दफे ये कहता हूं कि पहले एक दूसरे तरह का क्रियाकांड प्रचलित था वो करुणान योग का स्वाध्याय करने वाला और चरणान योग का आचरण करके अपने को सबसे बड़ा धर्मात्मा मानने वाला और सारे जगत को तुच्छ समझने वाला ऐसे लोगों का क्या समझे अनिल है ना। वो क्रियाकांड था जिसके लिए कुंद कुंद ने लिखा क्रियाकांड सो ना मिले यह आत्म अभिराम और ज्ञान कांड से सुलभ है सहज आत्मा राम। तो फिर हमने माने हम जैसे लोगों ने वो अमृतंत के जमाने के भी हो सकते हैं वो कुंद कुंद के जमाने के भी हो सकते हैं एक नया क्रियाकांड विकसित कर लिया और उसके उसका क्या नाम है स्वाध्याय नाम का। सुबह से लेके 5 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक हम तो 6-6 घंटे का स्वाध्याय करते हैं 8-8 घंटे का स्वाध्याय करते हैं। गुरुदेव ने फरमाया था ना 2-4 कला स्वाध्याय जो ये और वो डॉक्टर चंदू भाई की प्रशंसा इसलिए करते थे क्योंकि वो 4 कला गुरु जी ने स्वाध्याय करता। हमने भी जो अधिक किन्हीं ग्रंथों का सही और स्वाध्याय कर लिया बस और कुछ नहीं है समझे ना और 0 है कौन क्या काय के में 0 है वो आत्मानुभूति शुद्धोपयोग। तो क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ आप वही हुआ ना उन्होंने वो पूजा पाठ का वो करना नहीं वो पढ़ने का उनने उसका मतलब समझ लो कुछ करना कुछ क्रियाकांड पालने का धोती दुपट्टा उड़ने का क्रियाकांड चलाया था और हमने एक स्वाध्याय नाम का क्रियाकांड चला दिया और फिर हम चौड़े और सकड़े हो गए। फिर वो आत्मानुभूति की महिमा हमारे चित्त से हट गई, शुद्धोपयोग का स्वरूप हमारे सिद्ध के हट गया, शुद्ध परिणति क्या है वो हम नहीं समझे, तो हमारी भी वही हालत है। मेरे कहने का अर्थ ये है, इन्होंने जो लिखा ये तेन माने धर्म ध्यान, वो तो विशेषण जानने लो कर्म बंध विषय, तुम तो धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, ठीक है ना। विशुद्ध धर्म ध्यान से माने विशुद्ध परिणाम वाला माने शुभभाव वाला जो धर्म ध्यान है, और उससे होने से अपने को धर्मात्मा मान लगे हैं, उन लोगों को यहाँ समझाते हैं, उन लगा ना बोध्यन्ते माने उनको हम समझाते हैं जिनकी विशुद्ध धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि। अब वो अंधे किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम सबको ये बात गहराई से समझना कि अध्ययन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अपने यहां देशना लब्धि पूर्वक करण लब्धि होती है, कोई तो करण लब्धि की महिमा बहुत गाता और देशना की उपेक्षा करता है। हमने बहुत पढ़ लिया, चलो अब हमको नहीं पढ़ना, अब हमको नहीं सुनना किसी का, क्यों, हम तो अकेला गुरुदेव का सुनेंगे, और गुरुदेव है नहीं, बस हेरा तुम तो छुट्टी, बस छुट्टी होगी, बस किताब हो गया ना टेप। अभी तो टेप से हर जमाने में तो नहीं होते थे टेप, जिनके गुरु मर जाते उसके बाद फिर उन्हें सुनने की जरूरत नहीं रहती थी, ऐसा मतलब हो जाएगा ना, क्यों। ऐसी अंधी बुद्धि वाले लोग, उनको मैं याद दिलाता हूं कभी कभी कि भैया गौतम स्वामी ने तुम बराबर ज्ञान था क्या नहीं था, दीक्षा लेते ही सुतकेवली हो गए थे और वो हो गए थे मन पर ज्ञान के धनी, फिर भी 7 घंटा और 12 मिनट आदि से अंत तक बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता था, और तेरे को क्या होगा हुआ है उसके नाम पर, अनुभूति के नाम पर तूने सबका सुनना और पढ़ना और स्वाध्याय ये सब बंद कर दिया, बनाने लग गए क्योंकि उन्हें ध्यान करना है। तो ऐसी प्रवृत्ति है, अपना 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, बाकी अपना भी 4 दिन है अपने पास, तो कल बात करेंगे।